नमाज नबी में से अगले बाब नमाजी का लिबास, इस पे एक डिस्कशन करेंगे और इसमें से जो बातें हमें मालूम हुई उसको अपने लफ्ज़ों में नोट करेंगे। सब बातों के हवाले बुक में मौजूद हैं, इसलिए अगर कोई बात सुनते वक्त उसका रेफरेंस चाहिए हो तो हम किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली बात इस चैप्टर से जो हमें पता चली और वो क्या है कि कंधों के नंगा होने की सूरत में नमाज अदा नहीं होती, यानी इवन मर्दों के लिए भी शोल्डर्स जो हैं वो ढके हुए होने चाहिए। दूसरी बात हमने इससे जो सीखी वो क्या है कि बाज़ दफ़ा मजबूरी में जब कपड़ा छोटा हो, कि डर हो इस बात का कि इमाम का सतर खुल जाएगा, तो उनसे पीछे नमाज पढ़ने वालों को उस वक़्त तक सर सजदे से नहीं उठाना चाहिए जब तक कि इमाम सीधा होके ना बैठ जाए। और अल्लाह अकबर, उस दौर की गुरबत का हाल देखिए कि कपड़ा इतना मुख्तसर होता था कि डर होता था कि इमाम का सतर ना खुल जाए, तो पहले वो पूरी अपनी जगह पे बैठ जाते, फिर पीछे ख्वातीन या मर्द जो भी होंगे वो फिर सर उठाएंगे। अगली बात इस रिवायत से जो हमने सीखी कि दौराने नमाज चेहरा खुला रखना चाहिए। अब आप कहें कि औरतें क्या करें, तो आप देखिए कि आम हालात में तो खुला रखना चाहिए चेहरा, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि आप जहां नमाज पढ़ें ऐसा कोना ढूंढें कि आप थोड़ा सा अपना निकाब ही ढीला कर लें। जैसे आप पब्लिक प्लेसेस में नमाज पढ़ते हैं तो उसके लिए अमूमन आप देखिए कि एक तरीका होता है कि निकाब आप पूरा यूं कर देते हैं सामने, अब उसमें जब पूरा डालते हैं तो दिखता है, लेकिन दूसरी सूरत कहती है कि जैसे ओढ़नी की तरह से ओढ़ना, बस आप देखिए कि जैसे ये दुपट्टा है, अब अगर मैं नमाज़ पढ़ते हुए अपने इस दुपट्टे को थोड़ा सा यूं कर लूँ तो ये सामने से मेरा चेहरा खुल जाएगा जो मेरा जाए नमाज पे आएगा, लेकिन ये चीज़ें अगर मुझे साइडों से जो लोग देख रहे हैं तो उनसे मेरे लिए एक पर्दा बन जाएगा, तो इस तरह कर लेना चाहिए बजाय इसके कि अगर मैं इसको पूरा डाल दूँ और सामने ना दिखे मुझे। और जगह भी कुछ ऐसी चूज़ करनी चाहिए कि सामने कोई ना हो। अमल की बात इससे हमने क्या देखी कि मर्द हो या औरत, नमाज के दौरान चेहरा खुला रखना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ऐसा मुमकिन ना हो, जैसे हरम में आप चारों ही तरफ से नहीं छुपा सकते क्योंकि आगे भी लोग हैं पीछे भी हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला चेहरे पे कपड़ा डाल के भी नमाज पढ़ी जा सकती है। और यहाँ एक लफ्ज़ सदल का इस्तेमाल हुआ है, तो सदल का तरीका इन्होंने लिख दिया है कि वो कंधों पर इस तरह कपड़ा डाले जाए कि दोनों तरफ लटकता रहे। अगली चीज़ इस चैप्टर से हमने सीखी कि औरतें जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकती हैं। फिर अगली बात सीखी कि हत्ता कि औरत नमाज के लिए घर से निकले लेकिन अपने आप को बड़ी ओढ़नी में छुपा ले। फिर अगली बात, नमाज पढ़ते वक्त ऐसा कपड़ा पहनेगी कि जिससे उसके कदम भी छुप जाएं। ये है वो मसला जो हमारे यहाँ बहुत ही गैर मारूफ है, औरत के लिबास में नमाज के दौरान ये लाजमी है कि वो अपने पाँव को छुपाए। पाँव में छुपाना क्या होता है, ये ऊपर का छुपाना हिस्सा, यानी कपड़े पहने हुए आमतौर पे तो अपनी आज़ार यानी ट्राउज़र या शलवार ढीली करके उससे पाँव को छुपाया जा सकता है, और ये कब मुमकिन होगा, जब खुले पैंचों की शलवारें होंगी। दूसरी सूरत यह है कि आप सॉक्स पहन सकते हैं। तीसरी सूरत यह है कि आप अबाया पहन लें। अबाया ऐसी चीज़ होती है कि उसमें सर से पाँव तक आप छुप जाते हैं। आज हमारे यहाँ औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क पे बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन औरत और मर्द की नमाज में जो फ़र्क है ना, वो सतर का फ़र्क है, दैट्स इट। बाकी रकतों का और एक्शंस का कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ये जो मसला यहाँ बयान हुआ है पाँव छुपाना, ये बस लोगों को नया लगता है, तो इसके लिए मैं आपको ये एक पेज दिखाना चाहूँगी जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से है। यानी इस एक पेज में वो तमाम रिवायतें जमा की गई हैं जो इस बात की दलील बनती हैं के सवाल भी यही किया गया था कि क्या औरत के कदम सतर में शामिल हैं, कदम ढांप कर नमाज पढ़े या बगैर ढांपे। तो इसका जवाब जो बहुत सारी रिवायात से दिया गया, थोड़ी सी मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि आप देखिए कि नमाज के मसले में अमूमन हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा समझे के लाइल्मी है, और बाज़ दफ़ा चिपके हुए कपड़े होते हैं लॉन के, उसमें नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा छेद होते हैं, चिकन की शलवारें होती हैं, दुपट्टे भी जो नमाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी इतने पतले होते हैं या उसमें भी इतनी सुराख होते हैं कि वो सतर को पूरा नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारी नमाज़ों में खुशू अगर नहीं आता तो उसकी बहुत बड़ी वजह हमारा लिबास भी है। इस पे एक अलग टॉपिक है, नमाज में खुशू कैसे, बल्कि एक सीडी जो है जन्नत के वारिस, उसमें भी इस पे बात हुई हुई है। अगर आप मज़ीद उसमें लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ चंद चीज़ें जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। कहते हैं कि औरत के कदम भी सतर में शामिल हैं, कदम ढांप कर नमाज पढ़े। मर्द और औरत के दरमियान इस सिलसिले में ये इम्तियाज़ है कि मर्द पाँव खुले यानी टखने नंगे और औरत पाँव बंद रखे। मर्द के लिए नमाज या गैर नमाज हर हालत में टखने खुले रखना है और टखने बंद रखना कबायर में से है। इसकी दलील अब इन्होंने लिखी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने औरत के हिजाब और सतर के बारे में ये फरमाया, कालत, वो फरमाती हैं, क्या इन्नमल खिमारू मा वारा शारा वल बशर, ओढ़नी दुपट्टा ऐसा हो कि जिससे बाल और चमड़ा छुप जाए। फिर इसके बाद एक और रिवायत इमाम मालिक की है, उसके अंदर भी हमें यही खुलासा मिलता है कि एक मौके पे हज़रत हफ्सा बिनत अब्दुलरहमान जो आईं, इन्होंने बारीक दुपट्टा पहना हुआ था, उम्मुल मोमिनीन ने उससे लेकर इसको फाड़ दिया और मोटे कपड़े का दुपट्टा इनको पहना दिया। फिर इसी तरह एक और रिवायत है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि औरत किन कपड़ों में नमाज़ पढ़े, उन्होंने फरमाया चादर और ऐसी लंबी कमीज़ में नमाज़ पढ़े जो इसके कदम के ज़ाहरी हिस्से को छुपा दे। तो इससे भी पता चला कि पाँव छुपाए जाएंगे। एक और रिवायत है कि बालिग औरत की नमाज़ ओढ़नी के बग़ैर अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। हैज़ से मुराद वो औरत जो सने बलूगत यानी हैज़ को पहुँच जाए, ये इससे मुराद है। इसमें बहुत सारी और रिवायतें भी रखी हुई हैं, लेकिन सारी बातों का खुलासा ये है कि पाँव का ऊपर का हिस्सा जो है वो छुपाया जाएगा, और सजदे के दौरान अगर नीचे का हिस्से खुल जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। और सबसे आसान बात इसमें यही है कि आप अबाया पहन लें, जैसे नमाज के लिए एक दुपट्टे का एहतमाम करते हैं, इस तरह आप सॉक्स पहन लें, थोड़ी देर के लिए पहनने फिर उतार दें, आप फील करेंगे कि इससे खुशबू आएगा। तो ये चीज़ एक मर्दों से औरत की नमाज में डिफरेंट है। अगली चीज़ हमने इस बाब से सीखी कि जिंदा या मुर्दा शख्स की रान नहीं देखनी, यानी मर्द मर्द की भी और औरत औरत की भी, ये जो थाइज होती हैं, रान जिसको बोलते हैं, इसको नहीं देखा जा सकता। इसमें एक छोटी सी बात जो अमूमन ख्याल नहीं रखा जाता कि बाज़ ख़वातीन खूबसूरती के लिए कभी कोई ऐसी आराइश करते हुए दूसरी औरतों के सामने अपने पूरी पूरी टांगों को खोल देती हैं, ये जायज़ नहीं। औरत का औरत से जो सतर है ना, वो घुटने तक है, यानी पाँव से लेके नीज तक और इस तरह ऊपर का हिस्सा, तो बीच का जो हिस्सा होता है यानी पेट से लेके दरमियान की और आपकी थाइस, ये औरत औरत के सामने भी नहीं खोल सकती। कोई मजबूरी है, जैसे बच्चे की डिलीवरी है या बीमारी की सूरत है, और उसमें भी एक एहतियात करते हुए ऊपर कपड़ा डाल के अगर किसी तरह से कोई ऐसी चीज़ों में वक्त गुजारता है तो और बात है, लेकिन बिल्कुल किसी को खोल के उस तरह आगे पेश कर दिया जाना, ये औरत का औरत से भी सतर है। फिर अगली चीज़ हमने इस हिस्से से सीखी कि अल्लाह के नबी कभी जूता पहन के भी नमाज़ पढ़ते थे और कभी बग़ैर जूते के भी पढ़ते थे। और इससे एक और बात हमने सीखी कि ये यहूद की मुखालफत में करते थे, क्योंकि यहूद जूते और मोज़े पहनकर नमाज अदा नहीं करते थे। फिर अगली चीज़ हमने इस हिस्से से सीखी कि नमाज अदा करते वक्त अपना जूता उतार कर दोनों पाँव के बीच में भी रख सकते हैं, यानी आपको डर है कि गुम जाएगा या कोई उठा के ले जाएगा या कीमती जूता है, तो आप उतारें उसको बीच में अपने पाँव के रखें और नमाज पढ़ लें। अगर जूते में कोई गंदगी लगी हो तो इसको रगड़ के उतार लेना चाहिए। फिर अगली बात है कि जूते अगर उतारें तो उसको दाएं या बाएं नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने ही कदमों के बीच में रखें, क्योंकि दूसरे नमाजियों को इससे तकलीफ़ होगी। अगली बात है जूड़े के बारे में। नमाज के दौरान बालों का जूड़ा बांधकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बाज़ कल्चर्स में मर्द भी जूड़ा करते थे, यानी बालों को खोल देना चाहिए, तो ऐसे वक्त में उसको खोल दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल जहन में उठते हैं कि औरतें अपने बालों को घर में हल्का फुल्का सा रोल करके क्लिप लगा लेती हैं या कोई पोनी लगा देती हैं, तो क्या वो भी इसमें आता है? तो वो इसमें नहीं आता इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे वो जूड़ा जो बिल्कुल सर के ऊपर कोहान की तरह, यानी ये जो गुद्दी होती है, और ये एक बहुत रिवाज था उस दौर में, आज भी है, तो इस सूरत में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन हल्का सा अगर नीचे बालों को के सिरे रोल किए गए तो वो फिर इंशाल्लाह डिफरेंट चीज़ है। अगली चीज़ हमने इसमें सीखी कि हत्तुल बसा ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस जगह नमाज पढ़ी जाए वो बिल्कुल प्लेन हो, क्योंकि एक मौके पे अल्लाह के नबी ने धारियां वाली, ये जैसे हमारी ये सफ़ें होती हैं, इसमें कितनी धारियां हैं, मेरे लिए इसमें खड़ा होकर इंसान तो इसके कलर ही देखता जाए, कॉम्बिनेशन देखेगा, शेड्स देखेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा यमनी चादर में नमाज़ पढ़ी जिसमें बहुत लाइनें थी, तो बाद में आपने कहा कि इसने मुझे नमाज़ के खुशू से गाफिल कर दिया। मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप वो हिस्सा सुने कि नमाज़ में खुशू क्या, उसमें 15-20 डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी नमाज़ों को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो है नमाज़ों के अरकान और फ़र्ज़ और उसमें दुआओं का पढ़ना, लेकिन खुशू के बगैर पढ़ी हुई नमाज़ें जो हैं वो इंसान को वाकई गाफिल कर देती हैं। फिर इसी तरह अगली चीज़ हमने सीखी कि जहाँ नमाज़ पढ़ी जाए उसके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो इंसान की तवज्जो को खींच दे। एक मौके पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक पर्दे के पीछे नमाज़ पढ़ी तो उसकी चीज़ें फिर आपके तसव्वुर में आने लगी। तो इसी से फिर कोशिश करनी चाहिए कि जाए नमाज भी बहुत ज़्यादा कलरफुल और फैंसी ना हो, प्लेन एक रंग के हैं ठीक है। हमारे यहाँ एक अमूमन तसव्वुर है कि जाए नमाज बिछाए बगैर नमाज नहीं पढ़ते हम लोग। हालांकि आप देखिए कि घरों के जो साफ़ सुथरे कारपेट हैं, जहाँ रोज़ सफाई होती है, अगर घर में बच्चे भी हैं तो पाकी पलीदी का तो वैसे ही ख्याल रखना चाहिए, कोई इसका नमाज से तो ताल्लुक़ है नहीं, मुसलमान तो वैसे ही पाक होता है। तो अगर ऐसी जगह है तो आप आम जगह पर भी पढ़ सकते हैं। इवन साफ़ सुथरा फ़र्श है, अगर आपने साफ़ किया, उसको माप लगाया, अब वहाँ पढ़ लें। बल्कि जितना आप खाली ज़मीन पर, खुली ज़मीन पर नमाज़ पढ़ते हैं, उतना अल्लाह ताला से कुर्ब और नेचर से और फील करने से भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये कि अगर जायनमाज रखें भी तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा सिंपल से हों, एक कलर के हों। जितनी मखमली और फोम की और सुर्ख और नीली पीली जायनमाजें होती हैं उतना फिर हमारी नमाज जो है वो मुश्किल होती है। फिर अगली चीज़ इस चैप्टर से हमने सीखी कि गर्मी की शिद्दत अगर हो और सजदे की जगह पे अगर कोई कपड़ा बिछाना पड़े तो इंसान बिछा सकता है। अब इस पूरे चैप्टर पे ओवरऑल अगर हम देखें तो नमाजी के लिबास की बात है। हमारे यहाँ एक तसव्वुर है मर्द के टोपी पहन के नमाज़ पढ़ने का, तो सुन्नत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि मर्द जो है वो टोपी पहने, लाजमी हिस्सा नहीं है। लेकिन औरत के लिए नमाज़ पढ़ते वक्त उसके सर से लेके पाँव तक हर चीज़ होनी चाहिए, इसको हमने देख लिया। और आप देखिए कि जितना नमाज का लिबास कपड़ा हमारा कंफर्टेबल होगा उतना हमारी नमाज में खुशी होगा। बाद दफ़ा हाफ स्लीव्स में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, पूरा वक्त दुपट्टा ही खींचते रहते हैं कि कहीं से कोहनी ना खुल जाए, कहीं से बाजू ना खुल जाए। बाज़ दफ़ा चिपके हुए कपड़े हैं, आजकल जो फैशन चलते हैं उसमें आप देखिए कि साइड से चॉक्स इतने खुले होते हैं कि कमर खुल गई। फिर बाज़ दफ़ा पैंट्स और शर्ट्स में नमाज़ पढ़ती हैं जो बच्चियाँ, तो वो इतनी छोटी शर्ट्स हैं जूँ ही रुकू में गई तो पीछे से इतनी कमर उठ गई, सतर ख़त्म हो गया। आपका सतर खुलने का मतलब ये कि आपका राबता टूट गया नमाज से। तो कम अज़ कम नमाज की हद तक इंसान का लिबास ऐसा हो कि जो उसके दिल में अल्लाह ताला की खशियत और खुशू को पैदा करे। जब खड़े होने लगे एक लम्हे के लिए देख लें कि क्या मैं ठीक हूँ, मेरा हुलिया ठीक है। और सारी मुश्किलों का हल ये है कि आप अगर एक लिबास ऐसा बना लें, बहुत अच्छे ऐसे अबायास भी मिलते हैं। मैं इजिप्ट में गई, मैंने वहाँ देखे कि एक पूरा एक ही कपड़ा होता है, सर से पाँव तक वो उसको पहनते हैं और उसी के पीछे दुपट्टा सिला होता है, वो उसके अंदर मतलब सारे बाल भी चले जाते हैं और रैप कर लेते हैं। अगर आप नॉर्मल हालात में ग्लव्स भी पहनते हैं और निकाब भी करते हैं तो हत्तुल वसा कोशिश कीजिए कि नमाज वहाँ पढ़ें कि जिसमें फिर आप चेहरा भी खोल सकें और हाथ भी खोल सकें। इन्होंने सवाल किया कि मर्दों के टखनों का क्या हुक्म है, तो इसके बारे में देखिए कि एक ईमान वाला मर्द जिस हाल में नमाज में होता है ना, उसी हाल में वो बाद में भी होता है। ये हमारे यहाँ एक तसव्वुर है कि आम हालात में तो पैंट्स पूरी नीचे तक होती हैं और नमाज में फोल्ड कर ली जाती हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली कैफियत तो हो सकती है, लेकिन मतलूब ये नहीं है। हर मुसलमान मर्द की एक पहचान ही ये होनी चाहिए कि उसके टखने खुले हों, तो मुमकिन हद तक खुले रखे, और अगर नहीं खुले हुए तो फिर नमाज में खोल लें। आज देखिए कि मर्दों के टखने ढक गए और औरतों के खुल गए, है ना जंग लगी हुई। आप पहले तो टखनों की बात करते थे, मैंने तो अब औरतों के घुटने भी खुले देखे, मुसलमान औरतों के। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में मुसलमान औरत की नंगी टांगे नहीं देखी थी, इस तरह लाइव इन पर्सन देखना। मुझे एक ऐसी जगह जाना पड़ा कि मैंने तो वहाँ कसीर तादाद देखी कि मैं घबरा गई कि ये क्या हो गया, और वो न जाने क्या नया कोई फैशन निकल आया। कल लोग बाजू एक उतारेंगे, अब वो भी उतार देंगे, लोग आपसे एक टांग पहना के एक चढ़ा लेंगे, अब वो भी पहन लेंगे। कभी इंसान सोचे तो सही कि मैं लग क्या रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल खुद से कर ले कि मैं इस वक्त लग क्या रही हूँ, तो बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता है। अब देखिए कि मुसलमान औरत आम औरतों से बहुत आला है, बहुत अफसल है। हम कुछ भी पहने, कुछ भी करें, कुछ भी हमारे एक्शंस हों, अगर उसमें हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दें कि मैं अल्लाह ताला की निगाहों में इस वक्त क्या लग रही हूँ, तो उम्मीद है कि हमारा बाकी हाल हुलिया भी जो है वो ठीक हो सकता है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। अगले चैप्टर जो है मस्साजिद के काम, इसमें से हम कुछ बातें अपने लिए नोट करेंगे। पहली बात हमने इससे सीखी कि अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाने वाले को जन्नत में घर की खुशखबरी है। और यहाँ देखिए मस्जिद के साथ फिर आप हर उस जगह को भी देख सकते हैं कि जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, और इसमें फिर हर वो जगह जो दीन के लिए आप रखते हैं उसकी भी इंशाअल्लाह ताला खुशखबरी है। अगली चीज़ हमने इससे सीखी कि पसंदीदा तरीन मुकामात अल्लाह को मस्जिदें हैं और बाज़ार इंतहाई नापसंदीदा। कितने लोगों की पसंद अल्लाह की पसंद से मिलती है, कितने लोग हैं जिनको बाज़ार बहुत नापसंद है, कहाँ दिल लगता है। चलें यहाँ की बात नहीं करती, पाकिस्तान जा रहे हैं 1 महीने के लिए, ज़्यादा वक्त कहाँ गुजरता है, बाज़ारों में गुजरता है, माने कि ना माने। तो अल्लाह ताला हमारा दिल बाज़ारों से उठा दे। दुआ मांगे ज़रा अपने लिए सब, सिर्फ चुपके से कह अल्लाह मेरे दिल से बाज़ार की मोहब्बत निकाल दे। अगली बात इस चैप्टर से जो हमने सीखी वो क्या है कि जो शख्स दिन के पहले हिस्से में या दिन के आखिरी हिस्से में मस्जिद में जाए, अल्लाह ताला उसके लिए बहिश्त में मेहमानी तैयार करता है। यानी अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में पता नहीं क्या कुछ तैयार करवा रहा होता है। अब मर्दों के लिए तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं, कम से कम हम औरतों का भी अगर ऐसा ताल्लुक हो, जैसे अगर घर में से शौहर या बाप या भाई मस्जिद में जाते हैं तो फजर या इशा, ये दो नमाज़ें जो सहाबियात भी मस्जिद में जाके पढ़ा करती थी। अगली चीज़ इसमें हमने सीखी कि वुज़ू करने के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जिससे बंदे का बचपना जाहिर हो। हदीस के जो लफ्ज़ है वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि जब तुम वुज़ू करके मस्जिद जाओ तो एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथों की उंगलियों में ना डालो, बेशक इस वक्त तुम नमाज ही में होते हो। क्या फीलिंग आती है, लयर मूड की कैफियत आती है ना। और इससे एक और बात हमने सीखी कि वज़ू करते ही बंदा हालत नमाज में चला जाता है, तो फिर उसके बाद गीबत कर सकता है। वज़ू करने के बाद नमाज तक पहुंचने में हमारे कितने इम्तिहान होते हैं, फ़ोन आ गया तो वो आधा घंटा उसमें लग गया। यानी जो ही वज़ू करें ना तो उसके बाद बस फील करें कि आप नमाज की हालत में हैं। फिर अगली चीज़ कि मस्जिद अक्सा में एक नमाज 1,000 नमाजों के बराबर है और बैतुल्ला में एक नमाज दूसरी मस्जिदों की निस्बत 1,00,000 नमाजों से बेहतर है, और मस्जिद नबवी 1,000 नमाजों के बराबर है, वहाँ नमाज अदा करना। क्या मतलब है इसका, अब 1,000 नमाजें वहाँ पढ़ ली तो अब फिर बाद में आके 1,000 नमाजें अपनी छोड़ दें। देखिए सवाब में बराबरी है, फ़र्ज़ साकित नहीं होता। ठीक है, इसी तरह एक चीज़ हमने सीखी कि फ़र्ज़ नमाज का मस्जिद में अदा करना और नफिल नमाज का घर में अदा करना मुस्तहब है। क्यों? फ़र्ज़ में इज्तमाईत होगी, मस्जिद में जाके नमाज अदा करेंगे, लेकिन जो नफिल नमाजें वो घर में पढ़ेंगे, इसका एक तो फ़ायदा कि रियाकारी नहीं होगी, दिखावा नहीं होगा, और दूसरा ये कि घरों में भी तो कुछ बरकत रहे। अगर हर नमाज बाहर ही पढ़ी जाए और किसी घर में कोई औरत नहीं है, सब मर्द ही रहते हैं, तो उस घर में तो फिर बिल्कुल भी अल्लाह का नाम नहीं लिया जाएगा। ये भी इसकी हिकमत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इससे तुम्हारे घरों में बरकत आएगी। अगली चीज़ हमने सीखी कि मस्जिद में दाखिल होते ही 2 रकत नफिल पढ़ने चाहिए, इसको तहियतुल मस्जिद कहते हैं, यानी मस्जिद का इरादा करना। अगली चीज़ प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, अगर कोई खाए तो फिर ब्रश करे या मिसवाक करे और उसकी बदबू को ख़त्म करे। अब यहाँ एक छोटा सा मसला है, और वो क्या कि जब प्याज या लहसुन खा के मस्जिद में जाना पसंदीदा नहीं बदबू की वजह से, तो सिगरेट पीने वाले के बारे में क्या हुक्म है? उस शख्स के तो दूर से उसके कपड़ों से भी बू आती है। इसीलिए फिर नासिरुद्दीन अल्बानी कहते हैं कि क्या किसी के तसव्वुर में ये बात आ सकती है कि सिगरेट पीने वाला प्याज और लहसुन के हुक्म में दाखिल नहीं? सबको मालूम है कि सिगरेट की बू प्याज और लहसुन की बू से कहीं ज़्यादा अजियतनाक होती है, इन दोनों के खाने में कोई ज़रर भी नहीं, जबकि सिगरेट पीने के बहुत से नुकसान आता है और कोई फ़ायदा ही नहीं। ठीक है, तो लिहाजा अगर किसी को बीमारी के लिए या इलाज के तौर पे खाना पड़े लहसुन, तो आ सकता है। अब ये ना कोई करे कि चूँकि अब लहसुन खा लिया है तो अब नमाज नहीं पढ़ते, इसका मतलब ये कि आप अपने आप को फिर साफ़ कर लें, दांत साफ़ कर लें, ताकि दूसरों को आपसे स्मेल ना आए। अगली चीज हमने इसमें सीखी कि मस्जिद में थूकना जो है वो नापसंदीदा अमल है। अगर कोई थूक दे तो उस पर मट्टी डाल के कफारा कर दे, यानी उसको छुपा दे। अब कच्ची मस्जिद है तो मट्टी डालेंगे, और आज इस दौर में यह है कि फिर उसको साफ किया जाए। अगली बात यह कि मस्जिद में सोना जायज़ है, लेकिन नमाज में नहीं, मस्जिद में। यानी अगर आप कहीं सफर पे हैं या कोई रास्ते में या कोई थके हुए हैं, थोड़ी देर स्ट्रेच करना चाहें तो आप सो सकते हैं, और नौजवान मर्द भी सो सकता है। फिर अगली चीज़ जो हमने सीखी कि मस्जिद में खरीदो फरोख्त मना है। वो जगह जहाँ 5 वक्त नमाज होती है, जिसको आप मस्जिद का प्रेइंग रूम कहते हैं, उसके अंदर कोई तिजारत अगर करता है तो अल्लाह के नबी ने उसके लिए बद्दुआ दी कि तुम्हारी इस चीज़ में बरकत ना हो। एक शख्स ने ऊँटनी का ऐलान करवाया तो आपने कहा ला रद्दा अल्लाहु अलैह, अल्लाह इसको कभी वापस ना लाए। अब यहाँ देखिए, बाज़ मिंबरों पे सारे ऐलान हो रहे होते हैं, फलां बच्चा गुम हो गया है, नहीं करनी चाहिए। देखिए, मस्जिद में इस तरह के ऐलान नहीं होने चाहिए, किसी की गुमशुदगी के, किसी की तिजारत के, एडवर्टाइजमेंट के। मस्जिद अल्लाह के लिए, ठीक है, कोई अलग रूम है, जैसे अब ये रूम जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये एक अलग रूम है, इसके अंदर हम कोई भी बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, आके बैठती हैं, ये और चीज़ है। लेकिन ख़ास तौर पे जो मस्जिद का मेंबर है या जहाँ नमाज के लिए अदा होती है, फिर वहाँ ऐसे कोई ऐलान नहीं करने चाहिए। फिर अगली चीज़ हमने इस हिस्से से सीखी कि जब कोई मस्जिद के लिए निकले बावजू होकर, तो अल्लाह ताला उसको हज का एहराम बांधने वाले जितना सवाब देते हैं। अल्लाह अकबर। घर से वजू करके निकलें और मस्जिद में जा रहे हैं तो आपको उतना सवाब है जैसे अपने एहराम बांधा और हज का। कितना आसान है ये अमल, और थोड़ी सी सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। अब कोई कहे कि अच्छा चूँकि ऐसा कर रहा हूँ तो फिर अब हज के लिए जाने की क्या ज़रूरत है, तो यहीं चले जाऊँ दिन में, तो ये बात नहीं। देखिए, जितनी फजीलतें होती हैं ना, इससे फ़र्ज़ साकित नहीं होते, तो फ़राइज़ बहरहाल अपनी जगह है। फिर अगली बात हमने इसमें सीखी कि जमात के साथ नमाज पढ़ने का तन्हा नमाज पढ़ने से 25 दर्जे ज़्यादा अजर है। अगली बात सीखी कि जो वुज़ू करके मस्जिद जाए तो उसके हर कदम से उसका दर्जा बुलंद होता है और गुनाह माफ़ होते हैं, और जब वो नमाज़ पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लिए उस वक़्त तक दुआ करते रहते हैं जब तक वो नमाज की जगह पे रहता है। हमें कितनी जल्दी होती है नमाज़ पढ़ते ही, सलाम फेर के झटक से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कितने तो फ़ोन ही मिस कॉल्स में आ चुके होते हैं, सारी फ़ोन कॉल उस वक़्त आती है जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, और जान पे बनी होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद जितनी देर आप अपनी जगह पे बैठे जिक्र अस्कार करेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, तो फरिश्ते दुआ देते हैं कि अल्लाह इस पर रहमत कर, अल्लाह इस पर रहम कर। जब तक नमाजी नमाज का इंतज़ार करता है तो वो नमाज ही में होता है, यानी एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए अगर आप बैठे रहते हैं अपनी जगह पे, तो आप इसी हालत में कि जैसे कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। फिर अगली चीज़ इससे हमने सीखी कि जो जितनी दूर से चल के मस्जिद में नमाज के लिए आता है, उसके एक एक कदम को लिखा जाता है। हम कहते हैं कि दूर से आएंगे, चलो छोड़ो घर में पढ़ लेते हैं, लेकिन अजर मिलेगा ना। बनू सलमा के कबीले ने मस्जिद नबी के करीब मूव होना चाहा, तो आपने कहा नहीं, दिया रुकुम दिया रुकुम, तुम्हारे घर तुम्हारे घर, तक तुबु आसा रुकुम, तुम्हारे निशाने कदम लिखे जाते हैं, जितने कदम चल के आओगे उतना ही तुम्हें अजर मिलेगा। फिर अगली चीज़ हमने इसमें सीखी कि मस्जिद का नमाजी अल्लाह ताला की रहमत के साए में होता है। 7 किस्म के लोग हैं जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। कौन कौन से लोग? अदल के साथ हुकूमत करने वाला, यानी आदिल हाकिम। फिर वो जवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी। तीसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिदों में अटका रहा, नमाज पढ़ के निकला, फौरन आने के लिए बेताब था। और चौथे वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बिछड़ते हैं। पांचवा वो जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और आंखों से आंसू बह जाएं। छठा वो शख्स जिसे ख़ानदानी खूबसूरत औरत ने बुराई के लिए बुलाया, गुनाह की दावत दी, लेकिन उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। और सातवां वो शख्स जब अल्लाह के लिए कुछ दिया तो दूसरे हाथ को भी पता ना चला। और लोग इस तरह की कोशिशें करते थे कि बाज़ दफ़ा, यानी ये हदीस इस तरह नोट करते थे कि इतने अंधेरे में देते कि एक हाथ से देते तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, यानी हालांकि ये किस तारा था कि छुपा के दो अल्लाह के रास्ते में। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान जितना अल्लाह के रास्ते में मतलब छुपा के देगा, और ख़ास तौर पर नफिल सदक़ात, नफिल चीज़ें, उसको उतना ही अजर होगा। फिर अगली चीज़ है कि मस्जिदों को पाक साफ रखना चाहिए। इसको तो मेरा लिए बड़ा बड़ा लिखवाना चाहिए, मोटा मोटा। फिर मस्जिदों में खुशबू का इख्तमाम भी किया जा सकता है। अगली बात, मस्जिदें सादी होनी चाहिए, बहुत फैंसी मस्जिदों का हुक्म नहीं है। आपने फरमाया कि क़यामत की निशानी है कि लोग मस्जिदों की खूबसूरती पे फ़ख्र करेंगे। अगली बात कि जो अंधेरे के वक्त नमाजों के लिए मस्जिद में चलकर जाते हैं, तो क़यामत के दिन उनको पूरे नूर की खुशखबरी है। फजर और ईशा दो नमाजें हैं ना, जो अंधेरों में चल के जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको नूर देगा, रोशनी देगा। फिर अगली चीज़ कि मुशरिक भी अगर कोई वजह हो तो वो मस्जिद में जा सकता है। मुशरिक नॉन मुस्लिम्स लोग मस्जिद में जा सकते हैं। अल्लाह के नबी ने एक शख्स को मस्जिद के मिंबर से बांधा था, सुमामा बिन असाल, हालांकि वो उस वक़्त नॉन मुस्लिम थे। फिर अगली चीज़ हमने सीखी कि मस्जिदों की देखभाल करना ईमान की अलामत है, क्योंकि अपने घरों को तो सब सजाते हैं, लेकिन अल्लाह के घर को साफ रखना किसी बंदे के अंदर ईमान का होना इससे साबित होता है। फिर अगली चीज़, कब्रिस्तान पर मस्जिद नहीं बन सकती, यानी कब्रों के ऊपर जाके नमाज़ पढ़ना उसकी इजाज़त नहीं है। और रेस्ट रूम्स, हमाम यानी शावर लेने की जगहों पे भी नमाज़ नहीं हो सकती। फिर अगली दुआ एक इस हिस्से में हमने सीखी, आप मेरे साथ दोहराइएगा, अल्लाहुम्मफ्तहली अबवाब रहमतिका। इसका तर्जमा है कि ए अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे। ये दुआ मस्जिद में दाखिल होते वक्त अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे और हमें भी पढ़नी चाहिए। ये मस्जिद में दाखिल होने की एक और दुआ पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाही वस्सलामु अला रसूलिल्लाही अल्लाहुम्मा ग़फिरली ज़ुनूबी वफ्तहली अबवाब रहमतिका। इसका तर्जमा है कि अल्लाह के नाम से दाखिल होता हूँ और दुआ करता हूँ कि रसूलुल्लाह पर सलामती हो। ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। सुभान अल्लाह, आप देखिए कि मस्जिद में जा रहे हैं तो रहमतें समेटेंगे ना। इसी तरह एक तीसरी दुआ भी आपने कहा कि जिसने ये दुआ पढ़ी तो बाकी सारा दिन शैतान से महफूज रहेगा। इसको भी पढ़ते हैं मिलके, आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीमी वबिवज्हिहिल करीम सुल्तानिहिल कदीम मिनश्शैतानिर्रजीम। इसका तर्जमा है कि मैं अजमत वाले अल्लाह, उसके इज्जत वाले चेहरे और इसकी कदीम बादशाहत की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। तो ये तीन में से कोई एक दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, एक याद कर लें, दो लिख के रख लें, कभी कोई पढ़ लें कभी कोई। इसी तरह अगली बात सीखी कि मस्जिद से निकलते वक्त अल्लाह के नबी क्या दुआएं मांगते थे, मिलके पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़दलिका। ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ। दूसरी दुआ है बिस्मिल्लाही वस्सलामु अला रसूलिल्लाही अल्लाहुम्मा ग़फिरली ज़ुनूबी वफ्तहली अबवाब फ़दलिका। फ़र्क क्या है दोनों में? वहाँ था अबवाब रहमती का, दाखिल होते हुए रहमत है, निकलते हुए फजल है। क्यों? जब मस्जिद में आएंगे ना तो अल्लाह की रहमतें लेंगे, और मस्जिद से जाएंगे तो फजल क्या है? दुनिया का माल, ये जो रिस्क हलाल का कमाना और दुनियावी फ़ायदों का हासिल करना, ये फजल है। तो जब मस्जिद से निकलें तो कि अल्लाह ताला मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम मुझे मेरे बाकी कामों में बरकत दे। जो भी काम आप दुनिया का करने जा रहे हैं, मस्जिद में आए तो कि सब छोड़ आए हो, बस अब मुझे तेरी रहमत चाहिए। इसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह मस्जिद से बाहर आता हूँ और दुआ करता हूँ कि रसूलुल्लाह पर सलामती हो। ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे लिए अपने फजलो करम के दरवाज़े खोल दे, आमीन। आखिरी बात जो इस चैप्टर से हमने सीखी वो क्या थी कि मस्जिद में ऊंची आवाज़ बुलंद करना मना है। मैंने किसी मस्जिद का जिक्र किया किसी से और उन्होंने कहा, अच्छा हाँ ये वो मस्जिद है जहाँ बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। अल्लाह अकबर, ये कैसे तारुफ है! अल्लाह करे कि हमारी मस्जिदें सही तरह की मस्जिदें बन जाएं। اور بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والے بنے. تو الحمدللہ یہاں چیپٹر پورا ہوا. اللہ تعالی ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے.